वशा विरहुम फिल अमरी, और इनसे अपने कामों में मशवरे लेते रहे। साहबे कराम के मशवरे में कमी बेशी की बुनियाद पे भी गज़वे उहद में तकलीफ हुई थी। अल्लाह ताला नबी को कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि आइंदा आप इनसे मशवरे ही लेना छोड़ दें। आप इनसे कह, नहीं नहीं चुप करो, ऐसा तर्ज मली ने इख्तियार करे कि कोई बात ही ना इनकी सुनी जाए, नहीं इसमें एतमाद पैदा होगा। याद रखिए, जब अमीर मशवरा करता है ना तो वो आपको अहमियत दे रहा होता है। इज्तमाही जिंदगी के लिए मशवरा बहुत जरूरी है। आज जब आप लफ्ज शाविर की असल सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। कितना मशहूर लफ्ज है हमारे यहाँ मशवरा। पहले तो मैं आपको दावत देती हूँ, ठीक है हमें पता मशवरा क्या होता है, काउंसलिंग, कंसल्ट करना, राय लेना, आप बताइए आप, लेकिन इसकी असल क्या है, किसी को पता? नहीं पता। शहद को छत्ते से निकालना और जमा करना, इमेजिन करें। अल मशार कहते हैं वो छत्ता जिससे शहद निकाला जाए। इसी तरह शौर कहते हैं छत्ते से निकले हुए शहद को, और मिश्वर कहते हैं वो लकड़ी जिससे शहद निकाला जाए। और मिश्वरा तू, हम क्या कहते हैं, मशवरा, बस उसको जेर लगा ले, मिश्वरा तू कहते हैं छत्ते को। सारे लफ्जों से क्या समझ आया? दूसरों से मशवरा करने वाला शहद को निचोड़ता है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने इंसानों के दिमाग मुख्तलिफ बनाए हैं, उनको मुख्तलिफ स्किल्स दी हैं। हर फन मौला कोई नहीं हो सकता, एक फन मौला ही हो जाए तो बड़ी बात है। अब जब अल्लाह ने मुख्तलिफ जहन दिए, मुख्तलिफ लोग अपने हिसाब से आपको मशवरा देते हैं, आपको बताया आपकी स्किल्स कितनी बढ़ जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई मशवरा लेने देने वाला नहीं था। नबी, आखिरी नबी, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबीजीन, उनसे ज्यादा अकल किसकी थी दुनिया में? कहते चलो भाग जाओ, तुमसे मशवरा। बास लोगों में ये रौनत होती है कि मशवरा नहीं लेते। और मैंने जब से ये बात नबी सल्लम की पढ़ी है कि अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई मशवरा नहीं लेता था, मैं आपको अपना वीक पॉइंट बताती हूँ कि मुझे मशवरा लेने की इतनी आदत है कि मैं बच्चों से भी लेती हूँ। कोई कोई बात कहे ना, बेटे आपका क्या मशवरा है, आप क्या चाहती हैं, आप क्या हो। मुझे इतना अच्छा लगता है दूसरों से मशवरा लेना। सारा दिन शायद मैं जितने मैसेज करती आती रहूँ उसमें आधे से आधा सिर्फ मशवरों के होते हैं। कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसके जवाब में कहती हूँ आप हो तो क्यों, क्यों मुझे पता होता है अगला बंदा मेरे से अच्छी बात सोच सकता है। जब मैंने पहले बोल देना है ना तो इन्होंने चुप हो जाना है। किसी मीटिंग में, ऑनलाइन ऑन साइट में कभी आपको इत्तफाक हो, सारों की राय सुन के बाद में अपनी बोलती हूँ। क्यों? कि मैंने शुरू में बोल दी तो इन्होंने अपना जहन बंद कर लेना है, सब मेरी बात पे घूमेंगे। और फिर उससे क्या खूबसूरत नुक्ते सामने आते हैं, क्या चीजें सामने आती हैं। तो मशवरा जो होता है ना, इब्ने फारस की एक डिक्शनरी है, वो कहते हैं किसके बुनियादी मानों में किसी चीज का जाहिर करना, पेश करना और किसी चीज को ले लेना, ये सब आता है। असल में इसमें वही बात है कि दूसरों की बेस्ट स्किल्स को ले लेना। शावरा मुशवरतन तश्वरा, बाहमी मशवरा करना अपनी असल के एतबार से छत्ते को नचोड़कर उससे शहद निकालने से मुराद है। तो मशवरा क्या होता है? दूसरों के ख्यालात का शहद, दूसरों के ख्यालात को निचोड़ना, फिर किसी नतीजे पे पहुंचना। फिर अगर आप देखिए शहद क्या करता है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत नहल में, कुछ कुछ तो आप सबको पहले से ही पता है। अगर खुद शहद से ये मफहूम लिया जाए तो आप देखिए कि शहद की मक्खियां अपनी अपनी मेहनत का माह हासिल एक जगह जमा कर देती है ना। कोई अपने जिस्म में वो फूलों का सत निचोड़ के लाती है और वो उसमें डालती है, कोई अपने परों से घुमाती। शहद बनने का अगर आप अमल पढ़े ना तो आपको समझ आएगा कि शहद कई मक्खियों के कॉपरेशन से बनता है। तो वो भी मशवरे की रूह है कि जब मशावरत होती है, मुख्तलिफ लोग, अफराद अपनी राय, मुख्तलिफ स्टेटस के लोग जो है वो अपनी चीजों को जमा करते हैं, उसके बाद शहद की तरह का एक मीठा फैसला हो जाता है। गौर व फिक्र और नतायज को एक जगह जमा करना। फिर इसी तरह आपने कभी किसी को रुई धनते देखे, कभी देखे रुई धुनना, वो जो चरखा कहते हैं, उसके अंदर एक कमान होती है धागे की, उस कमान को भी मिश्वार कहते हैं। अब वो भी देखें, रुई धुनने वाला क्या करता है, पूरे वो कॉटन का जो वो बिसीड होता है ना उसको डाल के तो धुनक देता है। तो आरा को मुख्तलिफ लोगों की जो राय है ना उनको धुनना और खोलना। पता नहीं आपको समझ आ रही है ये बातें कि नहीं, किसी मीटिंग में बैठे हो तो आप समझें, ऐसे अंदर से गुत्थियां निकलती हैं। और ये जो लफ्ज है ना इशारा, इशारे लाई, ये भी इसी से ही है। शीन वो रॉय इसका रूट होता है। बहरहाल और भी बहुत खूबसूरती है इस लफ्ज के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज शहद को जरूर याद रखेंगे। हदीस में तल मुस्तशार मोत अमन, जिससे मशवरा मांगा जाए ना वो अमीन होता है। मशवरा जिनसे लिया जाए उनको सही मशवरा देना चाहिए, और जो मशवरा ले दे यानी इस मशवरे के अंदर सच्चाई का पहलू जरूर होना चाहिए। और जब मशवरे करते हैं, और इसमें आप देखिए कि इस्लाम में इसकी इतनी अहमियत है कि एक सूरत सूरत शूरा के नाम पे है, अमरहुम शूरा बैनहुम। तो किससे मशवरा ले? लाइक माइंडेड लोगों से ले, मुखलिस लोगों से ले, कोई ऐसा प्रेजरिस ना हो कि आपको गलत मशवरा दे दे, ये नहीं करना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मशवरा मशवरा होता है, फैसला नहीं होता। मशवरा देने वाला ये ना सोचे कि आप मेरा माना भी जाए, अक्सरियत का मशवरा मान लेना चाहिए, जिसको आप मेजोरिटी इज अथॉरिटी कहते हैं। नहीं, देखिए ना, एक तरफ अबू बकर बैठे हैं और एक तरफ काम मुसलमानों की जमात है, तो सारी जमात एक बात के और अबू बकर दूसरी बात के, तो किसकी सही होगी? अबू बकर की सही होगी ना। तो एक बंदे का मशवरा बार दफा 20 लोगों के मशवरे से ऊंचा होता है। ये इस्लामी जमात कह लीजिए उसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि सारों के मशवरे हों, और उसके बाद अगर कायद किसी एक चीज को चाहे 2 लोगों ने मेंशन की और 10 लोगों ने दूसरी बात की तो उसको कबूल कर ले, इससे फायदा होगा। चंद रिवायतें सुनिएगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि हम अपने मामलात में मशवरा कैसे लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा लेते थे। अबू हुरैरा कहते हैं कि आपसे ज्यादा किसी को मशवरा लेने वाला नहीं देखा गया, ये तिर्मिजी की रिवायत है। हजरत आयशा कहती हैं कि जब मेरे मुतल्लिक ऐसी बातें कही गईं जिसका मुझे गुमान भी नहीं था, किसकी तरफ इशारा है? वाकया इफ्क, जो आप पे तोहमत लगी थी, तो अल्लाह के नबी मेरे मामले में लोगों को खुतबा देने के लिए खड़े हुए, आपने शहादत के बाद अल्लाह की हमदो सुनाए, इसकी शान के मुताबिक बयान की, फिर फरमाया अम्मा बाद, तुम लोग मुझे ऐसे लोगों के बारे में मशवरा दो जिन्होंने मेरी बीवी को बदनाम किया है, और अल्लाह की कसम मैंने अपनी बीवी में कोई बुराई नहीं देखी, और तोहमत भी ऐसे शख्स यानी सुफवान बिन मुअत्तल के साथ लगाई है कि अल्लाह की कसम मैंने उनमें भी कभी कोई बुराई नहीं देखी। वो मेरे घर में जब भी दाखिल हुआ तो मेरी मौजूदगी ही में दाखिल हुआ। इससे क्या पता चलता है? शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर को घर में इस तरह बेतकल्लुफ आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं कभी सफर की वजह से मदीना नहीं होता तो वो भी नहीं होता, और वो मेरे साथ ही रहते हैं। ये बुखारी की रिवायत है। यहाँ क्या पता चला? निजी मामले में भी नबी सल्लम ने मशवरा मांगा। बीवी थी ना अपनी, तो दूसरों से मशवरा क्यों मांग रहे हैं? फिर याद रखिए कि इस्लामी तंजीम का अहम असूल है, शूरा कहते हैं, जिम्मेदार अफराद को जमा किया जाता है, अच्छे जहनी तौर पे पुख्ता लोग फिर मशवरा देंगे। इसी तरह से याद रखिए कि हजरत अनस की एक रिवायत है, नबी सल्लम ने फरमाया, मन खाबा मन इस्तखारा वला नदीमा मन इस्तशारा, जिसने इस्तखारा किया वो नाकाम नहीं होगा, और जिसने मशवरा किया उसे नदामत नहीं होगी। तो मशवरे करने चाहिए, कब किया जाए? जब तक फैसला नहीं हुआ हुआ, ये भी नोट करिएगा। हर मामले में मशवरा लिया जा सकता है, लेकिन शरीयत के मामले में मशवरा नहीं लिया जा सकता। क्या ख्याल है, 5 नमाजें पढ़ा करूं कि 4? ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? इंतजामी मामलात में लिया जाएगा, और उन मामलात में जिनमें शरीयत खामोश है, जो मामला क्लियर है, डिसाइडेड है, कोई कह अच्छा मैं सूद लूं कि ना लूं, मशवरा करते हैं, कोई तो उसकी तुक नहीं है, कोई ना कह देगा तो भी एक बराबर है, हाँ कह देगा तो भी एक बराबर है। फिर इसी तरह आप देखिए हुक्काम को भी मशवरा लेना चाहिए, मगर किन से? शहर में रहने वाले एक पढ़े लिखे मुहज्जब शख्स और एक देहाती के मशवरे में कोई फर्क होगा? ये जो आज जमहूरियत के नाम पे वोटिंग सिस्टम चलता है, क्या वो ठीक है? बिल्कुल भी नहीं ठीक। एक आलिम और एक जाहिल का वोट एक बराबर होता है। और फिर एक बात और है कि जब कोई फैसला कर दिया जाए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, फिर मशवरा नहीं लिया जाएगा, अहले इल्म से लिया जाएगा, जो मामले का बराहे रास्त इल्म रखते हों उनसे मशवरा लिया जाएगा, मजबूत राय वालों से मशवरा लिया जाएगा। और जब मशवरा ले लिया जाए और उसके बाद जो भी मामला किया जाए उसको भी अल्लाह पर डाल दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान में लिया मशवरा, लेकिन आप देखिए कि नुकसान फिर भी हो गया। ये भी लिखिए, बाज दफा मशवरा लेकर काम करते हैं फिर भी नुकसान हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ना सोचिए कि मशवरा कर लिया सब कुछ ठीक हुआ, इंसानों की अकल अकले कुल नहीं है, सबकी मर्जी सही भी तौर पे लगे लेकिन बाद में नुकसान हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो चाहता है वही हो जाता है। तरीकाकार क्या है? सबसे पहले मुतल्लिका लोगों को जमा किया जाए, सारी आरा सामने रखी जाए, उस पर गौर व फिक्र हो, सारी राय में से जो एक राय बेहतर उस पर डिस्कशन किया जाए, उसके बाद लीडर पे छोड़ दिया जाए। मशवरे के बाद आखिरी फैसला किसका होगा? हुक्मरान या जिम्मेदार का होगा, यानी उसके बाद वो सारी कहना चाहिए कि प्रोज एंड कॉन समझते हुए जो चीज बेहतर समझे फिर उसको कर देगा। हो सकता है आधा मशवरा किसी का ठीक हो, आधा किसी दूसरे का, और उसके बाद फिर जब ये काम हो जाए तो आखिरी काम है फैजा आजम तफा तवक्कल अल्लाह। इसको नोट कीजिए आयत का अगला हिस्सा, जब आप फैसला कर लें अब अल्लाह पे तवक्कुल करें। ये है असल में खूबी, जिसकी कमी है मुसलमानों के लीडरों में। इधर उधर लुढ़कते पुढ़कते ही रहते हैं, जमते नहीं है। पूरा मशवरा कर लीजिए, जब आपका दिल राय पे मुतमईन हो जाए एक फैसला कर लें, अब किसी की बातों की परवाह ना करें, अब तवक्कुल अल्लाह पे हो। गज़वे उहद से पहले अल्लाह के नबी ने मशवरा किया, कुछ लोगों ने राय दी जो आपकी भी राय थी, कुछ ने उससे मुख्तलिफ दी। अब जब खुले मैदान में आ गए अब कोई बात नहीं करनी। जब नबी सल्लम ने लोगों की राय पे ये फैसला कर दिया कि हम बाहर जाएंगे, हथियार पहन लिए, हजरत आयशा के हुजरे से आप निकले, जीरा पहननी भी थी, तो लोगों को समझ आ गई कि कुछ सख्त मामला पेश आने वाला है, क्योंकि अल्लाह के नबी नहीं थे जाना चाह रहे बाहर, लोगों के मशवरे पे गए थे। ये आपको बात याद समझ आ गई है ना? तो जब बाहर है तो लोगों को लगा अल्लाह के नबी नाराज हैं, यानी हमारी खुशी के लिए जा रहे हैं, हमने नहीं। तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी हम अपनी राय वापस लेते हैं, जो आप चाहे वो करें, आप जो सोचते हैं वही ठीक है, जो सुनना। तो आपने कहा किसी नबी को ये जेबा नहीं, एक दफा हथियार बांधने के बाद जंग किए बगैर उतार दे। तो ये आपकी तड़प थी, आपका तर्ज़े अमल देखिए, फैसला करके पत्थर की तरह जम जाते थे, इसको अजम कहते हैं। आज हमारे अंदर ये बड़ी कमी है, कमिटमेंट करते हैं पीछे हो जाते हैं, जरा सी मुखालफत होती है छोड़ते हैं। कुछ लोग तो शॉपिंग करने में बड़े परेशान हो जाते हैं, ये ले लूं वो ले लूं, उससे 10 दुकानें देखी, फिर एक लेने लगे, अभी लिया तो किसी ने कहा देख लो, चलो फिर वापस ले आए घर में, वापस आप दे रहे हैं वापस। कुछ लोग तो सिर्फ यही खेल खेलते रहते हैं, आज शॉपिंग करने जा रहे हैं कल वापस करेंगे, क्योंकि फ्री है जब तक मर्जी वापस करते जाओ, ये ठीक नहीं होता। इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद फरमाता है। क्या पता चला कि जब एक चीज पे डिटरमिन हो गए, और अजम का जो लफ्ज है ना, अजम था आइन जामीम है, मुझे ऐसे लगता है कि ये लफ्ज वाकई हमें दोबारा उम्मत को सिखाने की जरूरत है, इसलिए कि ये जितनी गॉसिप्स होती हैं, जितनी इन बातों को लेकर हम आज मुसलमान उम्मत में क्योस बर्पा कर देते हैं ना, उसके अंदर कमी अजम की होती है। बच्चों के ऊपर देखे, बच्चों की हर बात सुनकर बाप अगर कभी गाड़ी में बैठे, कभी निकल आए, कभी आइसक्रीम लेने जाए, कभी बर्गर लेने जाए, उस घर का मामला नहीं चलेगा। तो फॉर्म होना चाहिए, इसको फॉर्म मुझे लफ्ज अच्छा लगता है इंग्लिश का। अब कह दिया अब नहीं पलटेंगे, मसलन आपको इतने बजे से आना, इतने बजे सारों से मशवरा कर लिए, इतने बजे ठीक है, उतने बजे अब कर दिए, अब नहीं सॉरी। अब बार बार आपकी बातें चेंज नहीं हो सकती, बस दफा कई दिनों महीनों की मीटिंग्स के बाद डिसीजंस होते हैं। सोच लें जो आप कहते हैं वो करें, उसके बाद नहीं अब ये ना कर लें, अब वो ना कर लें, अच्छा अब ये ना कर लें। याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बहुत खूबी थी कि आप ऐसे पत्थर की दीवार बन जाते थे, नो मैं नहीं हिलूंगा। एक मौके पे एक शख्स ने आपने पास बुलाया, एक सहाबी थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी कोई मजबूरी है उनकी, तो वो मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते थे। कहने लगे मैंने घर का एक कोना मुकर्रर किया, आप एक दफा वहां आके नमाज पढ़ लें, जब आप नमाज पढ़ लेंगे ना तो फिर मैं उधर नमाज पढ़ूंगा। कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। जब नबी सल्लम गए तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैंने आपके लिए खाना भी तैयार किया, तो पहले खाना खा लें। तो आपने कहा किधर है वो जगह जहां नमाज पढ़नी है, यानी आपकी बात में इतनी फॉर्मनेस थी कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो करूंगा। खैर वो चुप हो गए, आपने फिर नमाज पढ़ी, जब नमाज पढ़ पढ़ा ली उसके बाद फिर सबके साथ खाना भी खा लिया। तो हमारा क्या हाल है, जिस लाया गली उस न लग जल्दी, हमारी कोई राय नहीं हो, जाऊं नहीं जाऊं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, तो ये दुरुस्त बात नहीं होती। जम जाए फायदा क्या होगा, लिखिए। जब आप कोई फैसला करके जम जाते हैं सबसे पहले अल्लाह की मदद आती है पुख्ता इरादे वालों पे। आदम के लिए भी तो कुरान में यही लफ्ज आता है ना, सूरह तौहा गालिबन, کہ ولن نجد لہو، ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، اپنی بات پہ جم نہیں سکے. اور میں نے یہ چیز ویسٹرن ماحول میں پلے ہوئے لوگوں میں دیکھی، ہمارے پاکستانیوں میں کوئی نہیں ہے. ہم اس کو فلیکسیبلٹی بھی کہہ دیتے ہیں، ڈھیلا پن بھی کہہ سکتے ہیں، مروت بھی کہتے ہیں، پر جو گورے ہوتے ہیں نا، گوروں سے مراد یہ کہ گوروں کے ملک میں پلنے والے کالے، ہم جیسے پاکستانی اپنے، میں نے ان لوگوں میں یہ خوبی دیکھی ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے. میرے اپنے گھر میں ایسی مثال موجود ہے، جو کہہ دیے سو کہہ دیے، پتھر پہ لکیر ہے، ہاں کو نہ میں نہیں اب بدل سکتے، نہ کو ہاں کے نہیں، کیونکہ آئی ول کیپ مائی ورڈس. اس کو انگلش میں آئی کیپ یور ورڈس بھی لکھ لیں تو کچھ آسانیاں ہوتی جائیں گی. جب کہہ دیا اب نہ ہٹیں. اب آپ نے کہا یہ کریں، دن میں 10 دفعہ تو میرے سامنے کئی چیزیں آتی ہیں، پھر ایسا نہ کر میں کہ جو آپ نے کہا آپ نبھائیں، میں اس پہ پیچھے نہیں ہو سکتی. آپ نے میٹنگ کا ٹائم رکھا ہے، اینڈ ٹائم پہ آدھے گھنٹے والے میسج آ جائے گا، آج کی بجائے کل نہ کر لیں میٹنگ، نہیں سوری آئی ہیو پلانڈ، آپ آئے نہ میں آ رہی ہوں. ورنہ لوگ آپ کو لٹو بنائیں گے، آپ کبھی ادھر نہ ادھر لڑکیں گے، آپ ہمیشہ ادھر سے ادھر لڑکتے جائیں گے. تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ دل میں اطمینان آتا ہے، ہمت مضبوط ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اخلاص بھی بڑھتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں جو ہم نے اللہ کے نبی کے ناطے سے پڑھی، اگر اوور آل دیکھیں تو ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک اچھے لیڈر کا ہمارے سامنے معاملہ پیش ہوتا ہے، کہ ایک لیڈر میں اگر نرمی بھی ہو، وہ بد زبان نہ ہو، سخت زبان نہ ہو، اور مشورے بھی لینے والا ہو، دوسروں سے اپنی بات کو منوا بھی سکتا ہو، خود بھی فرم ہو، یہ بھی بڑی ضروری ہے. لیڈر لڑکنے والا ہوگا، کئی ساتھیوں میں صرف یہ کمی ہے، میں خود جانتی ہوں، اپنے سمیت میں اپنے آپ کو ڈال دیتی ہوں اس میں، اگر کسی کو برا لگے کہ عزم نہیں ہے، پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں، ہاں وہ رول تو بنایا تھا پر کیا کریں، پھر ایسا نہیں ویسا نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں اگر آپ نوٹ کریں نا، تو ہم نے 10 خوبیاں پڑھی ہیں. نمبر 1، نہایت مہربان. آپ اپنے لیے بنائیں، آپ ایک قائد بننا چاہتی ہیں، آپ دنیا کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں، تو نمبر 1، نہایت مہربان، لوگوں سے پیار کریں، لو دیم. پھر رحم دلی، پھر نرم دلی، پھر نرم گفتاری، سافٹ اسپوکن، زبان شیری مل گیری. کسی نے پوچھا زبان سے تم 32 دانتوں کے بیچ میں کیسے رہتی ہو، دشمن ہی ہے نا، کہنے لگے اپنی نرمی کی وجہ سے، جدھر دانت آتے ہیں میں ادھر سے مڑ جاتی ہوں. اور یہ بات زندگی میں فائدہ دیتی ہے، چاہے سسرال کا ماحول ہو یا کوئی اور ماحول ہو. 5ویں خوبی لیڈر میں ہونی چاہیے، قصوروں کو معاف کرے. مانے کہ میرے ارد گرد رہنے والے فرشتے نہیں، ورنہ کوئی ایک بندہ دین کا کام کرنے والا نہیں ملے گا. 6ویں بات، لوگوں کے حق میں دل سے دعا کرنا، اپنی ٹیم کے لیے دعائیں مانگا کریں، راتوں کو روئیں، ان کی مجبوریوں پہ کوڑیں، اللہ سے مدد، ان کی ہمت بنائیں اور خود ان کے لیے روئیں کہ اللہ تو ان کی مجبوریاں دور کر دے. پھر 7ویں بات، اللہ کے غضب سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو. پھر 9ویں بات ہے، معاملات کو باہمی مشورے سے چلائیں. آپ دیکھیں، مشورہ لینے سے دوسروں کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے اور وہ آپ کے پھر سپورٹر بن جاتے ہیں. میں آپ سے کہہ دوں، جمعے کو 10 لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، میں نے کہہ دیا ان کو، اب آپ کام تو کریں گے پر کیسے کریں گے؟ اور میں آپ سے کہوں کیا خیال ہے، وہ مہمان آئے ہیں شہر میں، ان کو بلا لیں کھانے پہ؟ تو آپ سب، جی جی بالکل، ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے اور سارے کام آپ خود کر لیں. تو دوسروں سے مشورہ لینے سے لوگوں کو وہ اپنا کام لگتا ہے، ورنہ فورس کرتے ہیں آپ لوگوں کو. پھر اس طرح 10ویں چیز، اللہ پہ بھروسہ کرے. اور نوٹ کرنی ہے، صبر، حلم، ہمدردی، محبت، شرافت، غلطیوں کمزوریوں پر رعایت دینا، دوسروں کو اہمیت دینا، خندہ پیشانی سے ملی اسمائلی فیس کے ساتھ، زبان، طرز کلام، رہن سہن کو اجنبیت سے پاک رکھے، یعنی دوسروں کو آپ سے محبت محسوس ہو، اسٹرینجنس فیل نہ ہو، غیریت نہ لگے آپ کے اندر، اور خیر خواہی، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو. بس یہ کام کر لیجئے، کوئی آپ کو آپ کی جگہ سے کبھی نہیں ہٹائے گا. جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اور خلفۂ راشدین موت تک اپنی جگہوں پہ قائم رہے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں. اور جو لوگ ان خوبیوں سے متصف ہو جاتے ہیں نا، ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس لیڈر سے پیار کرتے ہیں، پروانوں کی طرح اس کے گرد جمع رہتے ہیں، وہ اس سے دل سے محبت کرتے ہیں، اس کا دکھ سکھ ان کو اپنا دکھ سکھ لگتا ہے. کتنی خوبصورت ٹیم بنتی ہے، ذرا نوٹ کر کے دیکھیں، آج اس کی بڑی ضرورت ہے. دنیا کے کاموں کا تو ہمیں اتنا نہیں پتا، دین کے کاموں پہ بھی لوگ کہتے ہیں مینوپلی ہے، اجارہ داری ہے، جی جو وہ کہہ دیں وہی ہوگا، उन्हीं का गुण चलता है हमारे स्कूल में, उन्हीं की बात हमारी मस्जिद में होगी, उनसे पूछ लेते हैं। हालांकि याद रखिए, अच्छा लीडर हमेशा खुद को बैक रो में रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सफों में होते थे जब फतह याद होते थे, जब कोई जंग हारी होगी तो वो सबसे पहले गए होंगे। लो प्रोफाइल पे काम करें, अपने आप को मत बड़ा करें, लोग जिए ये वो। यकीन करें, बाज जगहों पे तो ऐसे लगता है कि बस एक बंदे का काम है। वो एक किसी का वाक्य भी पढ़ा था ना कहीं के, वो ही सब कुछ करते थे, ये करना वो ये। कहीं मैं एक जगह थी तो मुझे किसी ने तारुफ कराया, ये उस्ताद ये इनसे मिलिए, इनके मियाँ ने केले मस्जिद को उठाया हुआ है। मैंने कहा इतने मजबूत हैं ये, कितने साल के हैं केले क्या? वो बेगम साहिबा थी तो उनके हस्बैंड से कहती अकेले उन्होंने मस्जिद पकड़ी हुई है। और हाल क्या है, लोग उस मस्जिद के बारे में क्या कहते हैं, वो मस्जिद से ज्यादा उनका नाम लेते हैं कि जी उनकी मस्जिद है। वो हज पे गए हैं, मस्जिद बंद है जी, कि वो मस्जिद हज पे गई हुई है, मस्जिद उमरे पे गई हुई है। चाबियां नहीं देनी अब्बा जी ने किसी को, तो क्या बात है, आप उठाए रखें, आप थक जाएंगे जिस दिन, उस दिन कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। कभी ऐसा ना करें, अपने आप को आखिर में रखें, मैं कुछ नहीं हूं, दूसरों से पूछिए, फिर देखिए कि दूसरे कितना काम करते हैं। तो दूसरों से काम लेना बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। इसमें खुद भी शामिल होना, नबी सल्लम देखिए गजवे खंदक के मौके पे कैसे शामिल हुए, क्या कुछ है इस पे, तो बेशुमार बातें हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को शामिल करें अपने मशरों में, बच्चों की राय लें। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था, ऐ मेरे बच्चे मैंने ख्वाब में देखा तुझे जिबा कर रहा हूँ, क्या ख्याल है तू क्या कहता है कि मैं क्या करूं, ये तो नहीं कहा चल जिबा हो जा, हो सकता है कहते तो इस्माइल भाग जाते। क्या कहा, फफल मा तो उमर, अब्बा जी जो आपको कहा कि आप कर ले, मशवरा ले ताकि बच्चों का भी हिस्सा शामिल हो, हस्बैंड से मशवरा ले, घर में सास ससुर, जिस बंदे, मैं आपको एक पते की बात बताऊं, जिस बंदे से मुखालफत का खौफ हो ना उसी से मशवरा ले लो। मतलब आप अपनी सास के साथ रहती हैं और आपने किसी अपनी चार सहेलियों को दावत पे बुलाना है, आपको डर है कि बुला तो लिया अम्मा जी का मूड खराब हो जाना है, उन्होंने शुरू होना, तो अम्मा जी से पूछ ले, अम्मा जी वो चार दोस्त हैं मैं उनको दावत में बुलाऊं, क्या ख्याल है? अम्मा जी कहेंगी हलीम तो मैं ही बना दूंगी, यकीन करें। और वरना अम्मा जी ने कुड़ते रहना है, आ गई गंद डाल गई, मेरा किचन खराब कर गई, वो हो गई, तो जीना बहुत बड़ा आट है, यकीन करें। जिसको ये आ गया ना, वो लोग उसके साथ चलेंगे, और वल्लाही जो लोगों से फिर आपको मोहब्बतें मिलती हैं, इसको तो आप समेट ही नहीं सकते क्योंकि आप उनको अहमियत देते हैं। फिर इसी के साथ देखिए आयत 160 लगा लीजिए, उसी के तनाजर में नबी सल्लम की सिफात के बाद अब आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है सबक का, जिसमें क्या कहा जा रहा है, ई यंसुरकुमुल्लाहु वला गालिबा लकुम, खूबियां जितनी मर्जी आ जाए आप में, आप जो भी कर ले, लेकिन याद रखिए कि मदद अल्लाह से आनी है। कैसे, क्या मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब ही नहीं आ सकता, सच है, बिल्कुल सच है। मई यखज़ुलकुम, और अगर वो छोड़ दे तुमको खजला से, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, तो कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करे। नोट कर रहे हैं आप लोग, अरबी का एक एक लफ्ज काबिले गौर है। यहां जो लफ्ज है ना यखज़ुलकुम, इसको देखिएगा कि जब अल्लाह सुबहाना तला आपके किसी काम को करने के लिए इरादा कर देता है, फिर वो काम पीछे नहीं हो सकता। कैसे, असल मदद अल्लाह की तरफ से। आज के दौर में क्या लगता है, अल्लाह ने हमें छोड़ा हुआ? क्या आज हम मुसलमान अल्लाह की मदद के मुस्तहक हैं? इल्ला माशाल्लाह, हमें तो कम ही दिखता है। लफ्ज़ खज़ल को देखिए, ये बहुत खूबसूरत है, कम आता है, आएगा आगे सूरह फुरकान में भी, यहां भी देख लीजिए। खाज़ ज़ाल लाम, खज़लतिल तबीबा कहते हैं, हिरनी अपने गल्ले से पीछे रह गई, हिरन है ना उसकी फीमेल, मिसिस हिरन कह लीजिए, ऐसी हिरनी को हाजिल या खुजूल कहते हैं। हिरन के लिए यानी फीमेल हिरन, या गाय के लिए भी जो बच्चे से पीछे रह जाती है, बच्चा उसने उठाया हुआ ना तो दूसरों से पीछे रह गई। इसी तरह से तखाज़लत रिजलाहु कहते हैं, उसके पांव ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी जो बंदा चलने से मजबूर हो जाता है ना, तो उसको रजुलुन खजूलुन कहते हैं। इसी तरह खिजलान, ऐसे शख्स का वक्त पर साथ छोड़कर अलग होना जिसके बारे में उम्मीद हो कि वो तो बड़ी मदद करेगा। कहीं याद आ रहा है कुरान में ये लफ्ज़ पढ़ेंगे हम आगे? मैंने नाम भी ले लिया अभी सूरत का। शैतान के लिए लफ्ज़ आता है खजूला, सूरह फुरकान में क्या आता है, वकान शैतान लिल इंसानी खजूला, वो भी इसी में ही है। तो खजला में क्या छोड़ना, मुराद ये कि मदद छोड़ देना। अल्लाह सुबहान तआला आज मुसलमानों की हालत पे मुझे लगता है कि तबसरा कर रहा है। तो आज फिर ये सारी कमियां भी हैं, लीडरशिप में भी कमी है, अवाम में भी कमी है, लेकिन उसके नतीजे में असल बात जो समझ आ रही है कि अल्लाह ने छोड़ा हुआ है। तो अल्लाह का साथ लेने के लिए क्या करना पड़ता है? किरदार साजी, इखलाक पैदा करें, किरदार मामला अच्छा करेंगे, अल्लाह ताला वापस ले आएगा अपनी मदद को। याद रखिए, हमारी सारी खूबियां अपनी जगह पे है, लेकिन असल चीज अल्लाह की है। फिर इसके बाद देखिए, मैदाने बदर या ओहद दोनों के नाते से ये अगली आयत आती है। पहले आयत पढ़े, फिर इसकी दो मुख्तलिफ तफसीरें हैं, वो ले लीजिएगा। आयत 161, वमा कान लिन नबी जी, और किसी नबी की ये शान ही नहीं है, उसको सूट ही नहीं करता क्या, अई या गुल, कि वो खयानत करे। यह गुल का लफ्ज है ना, गैन लाम लाम से है, जबर के साथ पढ़ेंगे ना, गल्ला या गुल्लू गुलूलन कहते हैं खयानत को, और गैन की जेर कर दें तो गिल, कीना, बुगज, दिल में जो जज्बात होते हैं। तो इस लफ्ज में खयानत और माले गनीमत में से किसी चीज का चोरी करना होता है, यानी इज्तमाही माल में से कुछ चोरी करना। दिल में कीना होना भी तो खयानत ही होती है ना। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी पर मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया। जरा नोट कीजिए, लोग तो नबी सल्लम पर भी इल्जाम लगाते थे, सोचिए। अल्लाह अकबर, किसी को कोई कहाँ छोड़ेगा? क्या इल्जाम लगाया कि आपने माले गनीमत में कुछ खयानत की है? नाउजुबिल्ला। कोई कहता था एक चादर ले ली है, किसी को कुछ शक था, तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि नबी की ये शान नहीं है कि वो खयानत का इर्तकाब करे। लेकिन माली खयानत के साथ साथ बाज लोगों के दिल में ये आया कि जो ओहद के सहाबा से गलती हो गई थी, ऊपर से तो अल्लाह के नबी ने कह दिया है कि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन दिल में आप हमसे नाराज हैं। उस पे ये उतरी आयत कि नहीं, क्या आपका ख्याल है नबी झूठ बोलेगा? जब कह जो दिया कि माफ कर दिया, तो फिर क्या बात हो गई? तीसरा नबी सल्लम पे एक इल्जाम लगाया गया, औज़ु बिल्लाह। कहते थे आप हमें मिसयूज कर रहे हैं, दीन के नाम पे आप हमसे जाती फायदे ले रहे हैं, हमें मार मरवा रहे हैं, लेकिन असल में फायदे आप अपने उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप अरब पर हुकूमत करना चाहते हैं, यानी आपको रोब डालने का और लीडर बनने का शौक है, इसलिए हमारी जानों को मुश्किल में डाला हुआ है। तो ये नबी के खिलाफ देख लीजिए नेगेटिव सोचें, ख्यालात आगे, अल्लाह ने पूरी बात भी नहीं करने दी, बल्कि कहा कि नबी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह मैं यगलुल जाति बिमा गल्ला यौमल कियामा, जो कोई खयानत करेगा तो वह अपनी खयानत की हुई चीज समेट कर हाजिर होगा क्यामत के दिन। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर हर जान को पूरा पूरा दे दिया जाएगा जो कुछ उसने कमाया होगा, और इन पर कुछ जुल्म ना होगा। देखिए लफ्ज फिर तुवफ्फा आ गया, कहाँ पढ़ा था? हजरत ईसा के बारे में सूरत के शुरू में ही पढ़ा था। क्या पता चला कि नबी खयानत नहीं करता? याद रखिए, अगर लीडर्स खाइन हो जाएंगे तो बरकत उठ जाएगी, सीधी सी बात है। बरकत आती ही दिलों और हाथों के साफ रहने से है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये आयत मा काने लिन नबी यगुल कब नाजिल हुई? एक सुर्ख चादर थी जो बदर के दिन माले गनीमत से गुम हुई। इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि इस आयत को बाज लोग गजवे बदर के साथ और बाज गजवे ओहद के साथ, अगर ये चादर वाली हदीस ले लें तो बदर है, और अगर दिल के कीने की या दिल से माफ ना करने ली लें तो ओहद है, दोनों मुराद है। बाज लोगों ने कहा शायद अल्लाह के नबी ने ले ली होगी, कोई कहता अच्छा शायद उनके लिए जायज होगा लेना। उस पर यह आयत नाजिल हुई, किसी नबी के लिए जायज नहीं, क्योंकि क्यामत के दिन वो खयानत के साथ आएगा, जो शख्स भी खयानत करेगा और उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये तिर्मिजी की रिवायत है। गुलूल कहते हैं माले गनीमत के छुपाने को, बहुत खतरे की बात है। इज्तमाही चीजों को बहुत सोच के करना चाहिए इस्तेमाल। आप देखिए, किसी एक की चोरी करेंगे ना, वो आके आपसे मुझसे ले जाएगा, लेकिन जब इज्तमाही माल हो, हुकूमती माल, जिसको माले गनीमत भी कहते हैं और जिसको बैतुल माल भी कहते हैं, मुस्लिम उम्मत के मसारिफ के लिए इस्तेमाल किया हुआ जो माल है, उसको बहुत सोच के इस्तेमाल करना चाहिए। केयरलेस नहीं होना चाहिए, एक पेज की जगह दो पेज जमा करने। कहीं जॉब करते हैं, उन्होंने अगर आपको इजाजत दी है तो फिर पूछ के कर लें उनसे कोई चीज, अगर आपने इस्तेमाल करनी है, पता चला वहां के पेंसिल रबड़ लेकर आ गए, अब आप सोचिए क्यामत के दिन क्या होगा। इसी तरह इसकी एक तफसीर क्या आती है कि ओहद में जो तीर अंदाजों ने जगह छोड़ी थी, उनको खौफ आया कि अल्लाह के नबी इनको हिस्सा नहीं देंगे माले गनीमत में से, तो कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो खयानत बहरहाल बुरी चीज है, अपनी जिम्मेदारियों को अपनी कोशिश के मुताबिक पूरा इस्तेमाल करें। नबी की नबुव्वत को कैसे कोई मानेगा अगर वो खाइन होगा, सोचने की बात है। तो ये एहसास दिलाकर बताया जा रहा है कि अमानतों की हिफाजत करो। और असल में नबी सल्लम की जात को लेकर वो लोग जो मुश्किल हालात में साथ छोड़ जाएं, उनको इशारा दिया जा रहा है कि देखो तुम तो ऐन वक्त पे अपना काम छोड़ के चले गए, तो सोचो कि अगर नबी भी यही काम करने वाला होता तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद कैसी होगी। मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया लोगों तुम में से कोई शख्स हमारे लिए आमिल मुकर्रर हो। आमिल कहते हैं जो लोगों से पैसे वसूल करने जाता है ज़कात वगैरह के, और इसने एक सुई चुराई या इससे ज्यादा तो वो चोर है और क्यामत के दिन वो इसे लेकर आएगा। बुखारी और मुस्लिम अबू हुरैरा की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने एक दिन खयानत के बारे में बात की और बहुत अहमियत दी। कहा ऐसा ना हो कि तुम में से कोई क्यामत के दिन मेरे सामने इस हाल में आए किसकी गर्दन पर ऊंट हो जो चीख रहा हो और वो कहे या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, तो मैं कहूंगा आज मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें बता दिया था, तंबीह कर दी थी। इसके बाद आपने इसी तरह घोड़े बकरी आदमी और जमीन के टुकड़ों का जिक्र किया। सोचे जमीन के टुकड़े कंधों पे उठा के फिर रहे हैं और हर बार यही बात दोहराई कि मैं कहूंगा आज मैं कुछ नहीं कर सकता। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है 3073 और 4734। आज आप देखिए कि सरकारी खजाने को लूटना और सियासतदानों के बाहर के मुल्कों में एसेट्स का होना कितनी आम बात है। अगर ये सब सच हो जो कहा जा रहा है, क्यामत के दिन क्या दुर्गत बनने वाली है, सोचने की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है, जब खैबर फतह हुआ तो माले गनीमत में सोना चांदी नहीं मिला था बल्कि गाय ऊंट सामान और बागात थे। फिर हम अल्लाह के नबी के साथ वादी अल-कुरा की तरफ लौटे। अल्लाह के नबी के साथ एक मदम नामी गुलाम था जो नबी जवाब के एक सहाबी ने आपको तोहफे में दिया था। वो अल्लाह के नबी का कजावा उतार रहा था कि किसी नामालूम सिमा से एक तीर आकर लगा। लोगों ने कहा मुबारक हो शहादत, बहुत जल्दी लोग फतवा देते हैं ना, खारे को शहीद बना देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज नहीं, जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर इसने खैबर में तकसीम से पहले माले गनीमत में चुराई थी वो इस पर आग का शोला बनकर भड़क रही है। ये सुनकर एक सहाबी एक या दो तस्मे लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया ये मैंने उठा लिए थे, तस्मे जूती बांधने वाले। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये भी जहन्नुम का तस्मा बनता। बुखारी की रिवायत है। तो याद रखिए ये बहुत खतरनाक मौजू है। सुम्मतु वफा कुल्लु नफ्से मा कसबत व हुम ला युज़लमून। आप पढ़ेंगे सूरह कहफ आयत 49 में, वहुदियल किताब फतरुल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी। जब किताब आमाल रख दी जाएगी तो मुजरिमों को देखेंगे वो इसमें से डरने वाले होंगे जो उसमें लिखा हुआ है, और कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हर छोटी बड़ी बात इसमें लिखी भी है। अल्लाह हमें बचा के रखे। अफमन इत्तबा रिदवान अल्लाह कमम बाबी सख्त मिन अल्लाह। क्या वो जो अल्लाह की रजा लेकर लौटे उस जैसा हो सकता है जो अल्लाह के गुस्से के साथ आए। वमा वाहु जहन्नम और उसका ठिकाना जहन्नम, वबिसल मसीर और बहुत बुरी जगह पहुंचने की। काम दोनों एक ही कर रहे हैं लेकिन एक अल्लाह की रजा ले रहे हैं एक अल्लाह का गजब। अच्छे काम करने में भी बुरी नीयतों इंसान को बदनाम करेंगी। पर मैं हम दर्जा तो निंद अल्लाह, सबके दर्जे अल्लाह के हाँ। वल्लाहु बसीरुम बिमा या मलून और अल्लाह वो सब देख रहा है जो वो कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि जितना ज्यादा इंसान अपना मुखासबा खुद करेगा ना उतनी फिक्र कम होगी। और इसके बाद जो आयत आ रही है उसकी तफसीर आप दो दफा सूरह बकरा में सुन चुके हैं। क्या आइए खुलासा कर लेते हैं बस। 164 लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। दर हकीकत अल्लाह ने बड़ा एहसान किया अहले ईमान पर। इस बात फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उन्हीं में से एक रसूल उठाया। क्या किया? चार काम लिखें। हिदायत का नुस्खा, इंग्रीडियंट्स ऑफ गाइडेंस चार हैं, वही हर दौर में हिदायत लेने के लिए जरूरी होंगे, आपके लिए भी मेरे लिए भी, हर एक के लिए अल्लाह ताला ने यही बात रखी है। पहली चीज यतलू अलैहिम आयातिही, उन पे अपनी आयतें पढ़ता है। फिर वह युज़क्कीहिम, उनको पाक करता है। तज़किया। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उनको किताब और हिकमत सिखाता है। यही चार काम है, वरना व इन कानु मिन कबल लफी दलाले मुबीन, वो इससे पहले बहुत खुली गुमराही में पड़े हुए थे। क्या पता चला कैसे लोग जो हिदायत लेना चाहते हैं उनके लिए ये सब कुछ जरूरी है कि वो ये सब काम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को यहां एहसान के तौर पे पेश किया गया, नेमत। अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें की हम पे, लेकिन किसी का एहसान नहीं जतलाया। यहाँ लफ्ज मन देखिए, मीम नून नून, उर्दू में मन क्या होता है? 40 किलो का होता है ना, बोझ होता है ना। इसी तरह से यहाँ मन एहसान के लिए है। इसी से अल्लाह सुब्हान ताला का नाम अल मन्नान भी है, बहुत एहसान करने वाला। यहां से नबी सल्लम की जात देखिए, और मन उस एहसान को कहते हैं जिसमें इंसान को मेहनत मुशक्कत न उठानी पड़े। और सच ये कि हमें भी नबी सल्लम की इस दौलत को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। इतने प्यारे नबी की उम्मत में से अल्लाह ने मुझे आपको बना दिया। एहसान जतलाने के लिए भी आता है, अल मनून कहते हैं एहसान जतलाने वाले को। जमाने और मौत को भी मनून कहते हैं, रईबुल मनून का लफ्ज हम पढ़ेंगे आगे कहीं। पता क्या चला कि अल्लाह के नबी की उम्मत में से होना एक बहुत बड़ा अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है। इसकी बाकी चीजें इंशाल्लाह बाद में करेंगे, लेकिन ये आयत थोड़ा सा आप इस पे खुद गौर व फिक्र करके आइएगा। कुरान पढ़ने के साथ साथ क्या मेरा तज़किया हो रहा है, तरबियत हो रही है, अल्लाह का खौफ आ रहा है, अल्लाह की नाराजगी का डर दिल में बढ़ता जा रहा है कि नहीं? आज का यही सबक था, हम सब अपने ऊपर लेकर सोचें। आप देखिए फिर हमारी सूरत पूरी होने वाली है, सिर्फ 2-3 सबक रह गए हैं। एक सबक जो है मनी, इसके बाद 2 सबक हैं टोटल। आखिरी आयतें बहुत ही खूबसूरत हैं, उनकी भी तवज्जो फिक्र रखनी है हमने इंशाल्लाह। बस तड़पें और अपने प्यारों को साथ रखें, अल्लाह ताला हमें खुद भी हिदायत पे लगा दे। चलिए जज़ाकल्लाह खैर।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعلمون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين